फाइल 19 उपन्यास दिल एक सादा कागज पृष्ठ 192 से। ठाकुर साहब बोले, रफी मियां, तुम्हारा बेटा बड़ा शरीर हो गया है। हाजी साहब खुश हो गए। बंद करवा दीजिए किसी कमरे में, हाजी मोहम्मद रफी बीड़ी वाले ने कहा। चल, ठाकुर साहब ने तहजीबुल के कान पकड़ कर कहा। तहजीबुल मचल गया। तमाम लोग हंसने लगे। अली अहमद आजिज कसीदे का कागज हाथ में लिए खड़े रह गए। ठाकुर साहब तहजीबुल को घसीट ले गए। उनकी कनपट्टी धड़कने लगी। तहजीबुल भी सब कुछ समझ रहा था, मगर जब ठाकुर साहब ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया तो तहजीबुल ने अपना कमरबंद पकड़ लिया। जिद न करो, ठाकुर साहब ने कहा। वो जरा जल्दी में थे, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं ना। पहले वादा करिए कि रफन माट साहब को स्कूल से निकाल दीजिएगा। ठाकुर साहब तो इस वक्त हिंदुस्तान के राष्ट्रपति तक को डिसमिस कर देते। क्या किया है उसने, हमें बहुत परेशान करते हैं। ठाकुर साहब ने तहजीबुल को गोद में बिठा लिया। तहजीबुल कसमसाया। ठाकुर साहब ने कमरबंद से उसका हाथ हटाते हुए कहा, साले को कल ही निकाल दूंगा। पर जब ठाकुर साहब ड्राइंग रूम में वापस आए तो रफन रुकैया समेत जा चुका था। ठाकुर साहब के तन बदन में आग लग गई। मूड इतना खराब हुआ कि वो शंकर दयाल के पास बैठते हुए मुस्कुराना भी भूल गए। माला ठाकुर साहब की तरफ बड़ी हिकारत से देख रही थी। ठाकुर साहब को लगा जैसे वो उनके इतनी देर से वापस आने का राज भांप गई है। बात टालने के लिए ठाकुर साहब ने कुछ बोलना जरूरी जाना। अरे भाई, ये बागी साहब कहाँ चले गए? रुकैया जी उनकी श्रीमती से मिलना चाहती थीं, शंकर दयाल जी ने कहा। हिप्पोक्रेट, उषा ने दिल में कहा। रुकैया जी उससे तन्हाई में मिलना चाहती थीं। मैं इन लोगों को ये बता रहा था ठाकुर साहब, शंकर दयाल जी ने कहना शुरू किया, कि साहित्य टेढ़ी खीर है। बरसों की तपस्या के बाद तो शब्दों से पूरा परिचय होता है। अली अहमद आजिज ने मुश्किल से जम्हाई रोकी। शंकर दयाल जी की बातों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो ये सोच रहे थे कि ठाकुर साला उनके लौंडे को भरी महफिल से उठा ले गया। फिर झल्ला कर वो तहजीबुल को माँ बहन की गालियां देने लगे। इस बहनचोद हिंदू से ठुकवाते साले को शर्म नहीं आई? ये साला मुल्क रहने लायक नहीं रह गया है। और उन्हें अपने ससुर का खत याद आ गया। उन्होंने ढाके से लिखा था कि फौरन चले आओ, यहाँ अल्लाह के फजल से सब खैरियत है। बंगाली खिलकत उर्दू बोलने वाले बिहारियों से नफरत करती है, पर ये बंगाली फितरतन बुजदिल भी होते हैं। सब उर्दू पढ़ रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में उर्दू के शोबे में बात चलाई गई है, आदि आदि। बड़ा लंबा चौड़ा खत था। आज साहब सोचने लगे, मैं तो इस साले बेवफा तहजीबुल की वजह से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, और ये साला अपनी डांग किराए पर चला रहा है। आज ढाके चला जाऊं तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो जाऊं। मैं तो कश्मीर से ईस्ट पाकिस्तान को बदल लेने पर तैयार हूं। माला की आवाज आई। आज साहब चौंक पड़े, यानी उनकी वाइस चांसलरी गई? उन्होंने माला की तरफ देखा। माला अपनी कुर्सी से उठकर रफन की जगह पर आ चुकी थी, यानी शंकर दयाल और ठाकुर साहब के बीच में बैठी हुई थी। शंकर दयाल जी का एक हाथ बेख्याली में उसकी जांग पर आ गया था और बेख्याली में वहीं पड़ा रह गया था। जवाहर नगर की दूसरी पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल औरतें अपनी अपनी जगहों पर बैठी माला और उसकी जांग से जल रही थीं। ये तो तुम बागी जी की बात दोहरा रही हो, मिसेस चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा। माला ने उनकी तरफ बड़ी हिकारत से देखा। हर बात किसी न किसी को कहनी ही पड़ती है मिसेस शर्मा। अफसोस की बात ये है कि 14 अगस्त 1947 को ये बात न मैंने कही न रफन भाई ने। माला ने जानबूझ के बागी जी या बागी साहब नहीं कहा। मैं तो उनकी कविता का बड़ा कायल हूँ, शंकर दयाल जी ये कहकर घड़ी देखने लगे जैसे जिंदगी में उन्होंने कभी घड़ी देखी ही न हो। उन्हें यूं घड़ी देखते हुए पाकर ठाकुर साहब को कहना पड़ा, अभी जल्दी क्या है, रुकैया जी को तो आ जाने दीजिए, उन्हें तो शायद आने में देर लगे, श्रीमती रामकुमार चौबे ने कहा। और भैया को मुंह अंधेरे जाना है। शंकर दयाल जी को भैया कहते ही श्रीमती रामकुमार ने माला की तरफ देखा जैसे कह रही हूँ शंकर दयाल जी रफ्फन भाई जैसे भाई नहीं हैं, सचमुच के भाई हैं। महफिल उखड़ गई, तमाम लोग चले गए। ठाकुर साहब ने हाजी मोहम्मद रफी बीड़ी वाले को रोक लिया। मुझे तो ऐसा लगता है हाजी साहब कि ये मास्टर अली रफअत इस लायक नहीं है कि अपने स्कूल में रखे जाएं। आवारा आदमी लगता है। शंकर दयाल जी बेचारे ने कुछ नहीं कहा। फिर भी कुछ भी हो, रुकैया जी उनकी धर्मपत्नी हैं। हाजी मोहम्मद रफी बीड़ी वाले रुकैया की धर्मपत्नी वाली हैसियत से खुश नहीं थे, पर ठाकुर साहब से बिगाड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जिस ड्राइंग रूम में ठाकुर साहब के बराबर की कुर्सी पर बैठे 555 की सिगरेट पी रहे थे, उसमें उनके पिता हाजी अली हसन प्यादा भेजकर बुलवाए जाते थे और वो हाथ जोड़े गर्दन झुकाए माँ बहन की गालियां सुना करते थे। इस ड्राइंग रूम में उनकी 7 पुश्तों ने माँ बहन की गाली सुनी थी। हाजी साहब जरा और फैल कर कुर्सी पर बैठ गए। मैं तो मास्टर अली रफअत को रखने के ही खिलाफ था, हाजी साहब ने कहा। सुना है कि पक्का कम्युनिस्ट है, आके उतरा कहाँ? कि राम अवतार के घर, मेरे घर आज तक सलाम करने नहीं आया है। मौलवी आजिज इशारतन कह रहे थे कि उसे और बातों का भी शौक है। अब आप खुद देखिए, अपनी बीवी घर में मौजूद है और दूसरे की बीवी को ले उड़ा। ये बात किसी को मालूम ही नहीं थी कि दरअसल रुकैया उसे ले उड़ी थी। रुकैया ने रफ्फन से जब ये कहा कि शायद वो उसे अपनी बीवी से मिलाते डरता है, तो रफ्फन के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया कि वो उसे उसी वक्त जन्नत से मिला लाए। वो हवेली से बाहर निकले तो नारायणगंज की रात यहाँ वहाँ टिमटिमा रही थी। पैदल ही चलते हैं, रुकैया ने कहा। क्यों, रिक्शे विक्शे से चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, कहकर रुकैया अपनी मखसूस हंसी हंसी। रफन ने इस हंसी का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, रुकैया ने कहा। उसके लहजे में इस बार एक हल्की सी उदासी थी। शंकर दयाल जी की सूरत कभी गौर से देखी? उसकी बिज्जू जैसी आंखें जब मेरे बदन पर रेंगती हैं तो मैं मुरझा जाती हूँ, बूढ़ी हो जाती हूँ, अकेली हो जाती हूँ। तो आपने उनसे शादी क्यों की? ये सवाल तो मैं भी अपने आप से बार बार करती रही हूँ। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे, अंधेरे से अंधेरे की तरफ। रुकैया सोचती रही कि जो रफ्फन इतना फ्यूडल न रहा होता तो उसकी जिंदगी आज कुछ और रही होती, और ये सोचते ही यकायक उसे जन्नत से शदीद नफरत हो गई। बोली, शादी न करती तो क्या करती? बाबा को तो तुम जानते हो, गप हाँकने और फिर बात अटक जाए तो अपनी बात को रखने के लिए पैसे खर्चते हैं। उन्हें ये बताने का कब्ज है कि वो दुनिया भर से सस्ती चीजें खरीदते हैं। जो चीज कोई 500 में लाता है वो बाबा को 150 में मिल जाती है। यार लोग उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। उनकी गप के सहारे मेरी जिंदगी नहीं कट सकती थी ना। आप मुझे क्यों सफाई दे रही हैं, रफ्फन ने पूछा। तुम्हें नहीं, अपने आप को सफाई दे रही हूँ। अंधेरे में रफ्फन को रुकैया का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आवाज में उसकी जिंदगी का सन्नाटा बोल रहा था। दोनों चुपचाप चलते रहे, उनके कदमों की चाप उनके पीछे पीछे चलती रही, उनकी जिंदगी की रात उनके आगे आगे चलती रही। तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, यकायक रुकैया ने सवाल किया। पाकिस्तान क्यों चला जाऊं? भाई जानों का खत आया था। न जाने क्यों उनका ये ख्याल है कि तुम मेरी बात बहुत मानते हो। ढाका यूनिवर्सिटी में एक रीडरशिप खाली है। मैं उस मुल्क में हिस्ट्री पढ़ाने क्या जाऊं जिसके पास अपनी कोई हिस्ट्री ही नहीं है। हिंदुओं जैसी बातें मत करो, उन्हें मक्खन लगाने से कोई फायदा नहीं। मैंने कल के खौफ में आज किसी हिंदू से शादी नहीं की है, मिसेस शंकर दयाल। रुकैया की आंखें गुस्से से भर आईं। उसने अंधेरे के रुमाल से अपने आंसू पोंछ डाले। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं आ जाते? मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। डरते हो? हाँ। रुकैया इस जवाब के लिए तैयार नहीं थी। उनके बीच फिर वही रात आ गई। न रफ्फन को रुकैया दिखाई दे रही थी, न रुकैया को रफ्फन नजर आ रहा था। ये जन्नत है, मेरी बीवी, रफ्फन ने रुकैया से जन्नत का परिचय करवाया। लालटेन की पीली रोशनी बीच में आ गई। न रुकैया जन्नत को देख सकी, न जन्नत रुकैया को। अल्लाह, रफन की पिछली मोहब्बतों से मेरा पिंड कब छूटेगा? ये तुमसे मिलकर ये देखना चाहती थी कि हम खुश कैसे हैं, रफन ने कहा। चाय बनाऊं? जन्नत ने पूछा। नहीं, अब मैं जाऊंगी, रुकैया ने कहा। चलिए छोड़ आऊं। रफन रुकैया को लेकर गली में आ गया। जन्नत खुले दरवाजे के पास खड़ी उन्हें जाता देखती रही। पहले वो एक मर्द और एक औरत से दो परछाइयां बने, फिर अंधेरा बन गए। रफन जमा जन्नत बराबर अंधेरा, रफन जमा भाई जानू बराबर अंधेरा, रफन जमा जन्नत बराबर अंधेरा, रफन प्लस जैदी विला बराबर अंधेरा, रफन प्लस 102 सट्टी मस्जिद बराबर अंधेरा, रफन जमा नारायणगंज बराबर अंधेरा, रफन जमा रफन बराबर अंधेरा, रफन जमा सैयद अली रफअत जैदी बराबर अंधेरा, रफन जमा बागी आजमी बराबर अंधेरा। रफन को जिस चीज से जोड़ो मतलब अंधेरा ही निकलता है। मतलब अंधेरा ही क्यों निकलता है? मन की प्यास जहाज का पंछी, बिरह का ओर न छोर, मधुबन बीच हिराए गयो कहीं मेरो माखन चोर। ये मधुबन कहाँ है? ये माखन चोर कौन है? क्या जिंदगी इसी अंधेरे और सवालों के इसी अटूट सिलसिले का नाम है? रफन ने मुड़कर देखा, साथ साथ अंधेरा चल रहा था। रुकैया के बदन की खुशबू में बसा हुआ अंधेरा, उसके साथ साथ बस रात का सन्नाटा चल रहा था। रुकैया के बदन की खुशबू में बसा हुआ सन्नाटा, चौधरी की बहन की खुशबू में बसा हुआ अंधेरा, श्रीमती शंकर दयाल की खुशबू में बसा हुआ सन्नाटा। ये लड़की दोस्त की बहन है या शंकर दयाल की पत्नी? उसने नारायणगंज की एक अंधेरी गली में रुकैया का पहला बोसा लिया। इस बोसे की कोई तैयारी नहीं की गई थी, ये एक बेइख्तियार बोसा था। रफन को यकायक लगा जैसे उसकी कनपटियां फट जाएंगी, सीने में एक गिरह सी पड़ गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। वो रुक गया, रुकैया रुक गई, फिर दोनों चलने लगे। रात अब भी उतनी ही अंधेरी थी। सामने वर्तमान प्रेस में रोशनी झांक रही थी। रफन ने कहा, जहां रोशनी हो रही है वो वर्तमान प्रेस है। राम अवतार याद है ना?
हाँ,
रुकैया ने कहा। वो भी भविष्य से फिसलकर वर्तमान में आ गया है। मैं दरअसल उसी की जगह पर काम कर रहा हूँ। वो निकाल दिया गया, मैं रख लिया गया। वो बात करने के लिए बात कर रहा था। दोनों वहीं बोसे के खूंटे से बंधे खड़े थे। तुमने इस जन्नत से शादी क्यों की है? मुझे ये नाम पसंद है। मैं अपना नाम बदल के जन्नत रख लूं? कितने नाम रखिएगा? उसने सवाल नहीं किया, कहा, रुकैया, मिस चौधरी, बाजी जान, मिसेज शंकर दयाल। राम अवतार के प्रेस में चलते हो? वहां लोग होंगे। तो क्या हुआ? दोनों वर्तमान की रोशनी की तरफ बढ़ गए। बोसा अंधेरे में पड़ा रह गया। राम अवतार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो कंपोजिंग कर रहा था। तुम तो मिलने आए नहीं, रुकैया ने कहा। मैं ही चली आई। मगर आप यहाँ, मेरा मतलब नारायणगंज में आप क्या कर रही हैं? इनसे फिर मिलो, रफन ने कहा। मिसेज शंकर दयाल, चाय पिलवाओ, रुकैया ने कहा। चाय? राम अवतार सिर खुजलाने लगा। चाय के लिए तो अब घर जाना पड़ेगा। तो घर जाओ, शारदा इसकी होने वाली वो है। मैं तो उसे कोई फिल्म स्टार नहीं समझी थी, रुकैया ने कहा। मैंने तो उससे कहा भी कि वो यहाँ क्यों सड़ रही है, उसे तो बंबई जाना चाहिए। क्या फिगर है उस लड़की का। राज कपूर को खत लिख सकती हूँ? राज कपूर का नाम सुनकर उससे ज्यादा उसका भाई एक्साइटेड हो गया। उस पर दया कीजिए बाजी जान, राम अवतार ने कहा। माला उसे रोज यही पट्टी पढ़ाती रहती है। माला ये जो नहीं चाहती कि आस पड़ोस में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की दिखाई दे। हमें चाय पिलवाओ, रफन ने कहा। राम अवतार चला गया। रफन के बदन में फिर वही सनसनाहट शुरू हो गई। राम अवतार को भगाने की इतनी जल्दी क्यों थी तुम्हें? आइए, जब तक आपको इस प्रेस की सैर करवा दूं। वो रुकैया को बगल वाले कमरे में ले गया। कमरे में एक पलंग पड़ा हुआ था। रुकैया ने पलंग की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देखे बिना पूछा, राम अवतार का घर कितनी दूर है? आने जाने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट? 10 मिनट का तो पता ही न चला कि किधर गायब हो गए। 10 मिनट उन्होंने राम अवतार के इंतजार में गुजारे। रुकैया के चले जाने के बाद भी वो उन खोए हुए 10 मिनटों को खोजता रहा। रफन के लिए बदन कोई नया अनुभव नहीं था, पर रुकैया, मिस चौधरी, बाजी जान और मिसेज शंकर दयाल का बदन, वो माला और शारदा दोनों ही की तरफ देखने से डरने लगा। अपने आप पर से उसका भरोसा उठ गया था। नारायणगंज, नवापुरा और जवाहर नगर में किसी को भी पता न चला कि रुकैया रफन को नारायणगंज की एक अंधेरी गली में चुपचाप तोड़कर वापस चली गई है। और जभी से रफन सबकी निगाहें बचाकर अपने व्यक्तित्व के टुकड़े चुन रहा है। ये तुम्हें आजकल क्या हो गया है? जन्नत ने पूछा। मुझे तन्हाई हो गई है।
क्या?
नारायणगंज में जी नहीं लग रहा है, उसने कहा। जन्नत उसके होठों पर उंगलियां फेरने लगी। कल भाई जानू का एक खत आया था।
तुम्हारे नाम?
हाँ। क्या लिखा है? गर्मियों की छुट्टी में ढाके बुलाया है, जन्नत ने कहा। साथ में भाभी का एक पर्चा भी था।
भाभी?
अरे हाँ, जन्नत बाजी। उन्होंने क्या लिखा है? उसने यूं पूछा जैसे भाभी को वो जानता ही न हो। उन्होंने लिखा है, आ जाओ, बड़ा मजा रहेगा, तुम्हारे मियाँ के बचपन के किस्से सुनाऊंगी।
चलो ना, हो आए।
रफन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जन्नत को सीने से लगा लिया। जन्नत ने आंखें बंद कर ली। तुम अपना नाम कुछ और रख लो, उसने कहा।
क्यों?
जन्नत को इस दोजख में रखते शर्म आती है।
पागल कहीं के,
वो हंस पड़ी। मैं तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ मांगती ही नहीं।
प्यार?
प्यार शायद एक तेज धार वाला चाकू है, उल्टा सीधा लग जाए तो लहू लुहान कर देता है।
प्यार?
रफन इस साधारण से शब्द की भारी चट्टान के नीचे दब गया।
प्यार से कुछ नहीं होता जन्नत, उसने कहा।
तुम्हारी खलीक बिया की शादी कितने बड़े घर में हुई है।
मैंने घर से शादी नहीं की है, मैंने तो तुमसे शादी की है,
जन्नत ने तर से कहा।
क्या कभी तुम्हें डर नहीं लगता?
लगता है, मुझे भी लगता है।
किससे डरते हो?
बचपन में सैदानी भी और दादा साहब की मूछों से डरा करता था।
और अब?
इस मियां ने अपनी बीवी के होते दूसरी औरतों की तरफ देखा तो जहन्नम की आग में जल रहा है, सैदानी बी की आवाज आने लगी। अब अपने बचपन से डरता हूँ। जन्नत की समझ में ये जवाब नहीं आया, पर इतने दिनों के साथ के बाद रफन पहली बार आज उसे अपने व्यक्तित्व की भूल भुलैया में ले जा रहा था। वो सांस रोके धड़कते दिल के साथ पंजों के बल चल रही थी कि कहीं उसकी आहट सुनकर रफन देख न ले कि वो भी उसके साथ आ रही है। जब डर लगता तो भागकर जन्नत बाजी के पास चला जाता। पाकिस्तान ने सब गड़बड़ कर दिया, नहीं तो उनसे मिलकर तुम बहुत खुश होती। जब ही तो कहती हूँ कि छुट्टियों में चले चलो, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी।
नहीं यार,
जन्नत को सीने से हटाकर वो उठ बैठा। उनसे मिलने का मजा तो जैदी विला में था। ढाके में जन्नत बाजी कहाँ मिलेंगी तुम्हें?
मिसेज सैयद अली सामिन से तुम्हें मिलाने का मुझे कोई खास शौक नहीं है।
अरे मगर जन्नत बाजी ही तो हैं बेगम सामिन।
तौबा करो,
जन्नत बाजी और बेगम अली सामिन का क्या मुकाबला? जन्नत बाजी पर तो मैं उस वक्त आशिक हुआ था जब 4.5 साल का था।
तुम्हारा नाम जन्नत की जगह कुछ और रहा होता तो भला मैं तुमसे शादी करता?
ये कहते कहते उसे एकदम से लगा कि जैसे वो जन्नत पर एक बार फिर आशिक हो गया है। जन्नत अली सामिन नहीं, जन्नत अली रफअत। उसने जन्नत से ये बात कही नहीं, पर जन्नत ये बात समझ गई। और यूं जैदे विला का भूत एक रात चुपचाप आदमी बन गया और जन्नत के सिवा किसी को इस तब्दीली का पता न चला।